ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। पिछले 24 घंटों में देशभर में 1814 लोग हुए कोरोना मुक्त। इसे मिलाकर कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की तादाद हुई 28,941। काठमांडू घाटी में 354 समेत देशभर में कोरोना के 980 नए मामले आए सामने। काठमांडू के वीर अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का सरकार ने किया निर्णय। और बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटों में देशभर में 1,814 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 980 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। इनमें काठमांडू घाटी की 354 संक्रमित शामिल हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित 9 लोगों की मौत भी हुई है। इसे मिलाकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरने वालों की तादाद 289 हो गई है। बता दें कि देशभर में जहां कोविड 19 से अब तक कुल 46,257 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं 28,941 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की तादाद 17,316 है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने ये जानकारियां साझा की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वीर अस्पताल को कोविड 19 अस्पताल के रूप में संचालित करने और इससे पहले वीर अस्पताल से दी जाने वाली अन्य सेवाएं राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर से देने का निर्णय भी सरकार ने किया है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना को सृजित समस्या बताकर सामाजिक संजाल के माध्यम से भ्रम फैलाने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बरकरार जोखिम के मद्देनजर विभिन्न जिलों में लॉकडाउन के स्वरूप में थोड़े से बदलाव के साथ निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई गई है। हमारे स्थानीय संवाददाताओं ने ये जानकारी दी। धनुषा और दांग जिले में भाद्र 28 गति तक और डडेलधुरा में भाद्र 31 गति तक के लिए निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ाया गया है। हालांकि दांग में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति के साथ साथ निजी यातायात के साधनों को जोड़ बेजोड़ प्रणाली में चलाने की अनुमति भी दी गई है। वहीं डडेलधुरा में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानों को संचालन करने की अनुमति दी गई है। इसी बीच राष्ट्रीय व्यापार संघ ने काठमांडू में निषेधाज्ञा का विकल्प ढूंढकर व्यवसाय संचालन का वातावरण बनाने की सरकार से मांग की है। संघ ने आज काठमांडू के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी जीवन दुलाल से मुलाकात कर लंबे समय की निषेधाज्ञा से व्यापारी व्यवसायियों के समस्या में होने के जिक्र के साथ निषेधाज्ञा का विकल्प ढूंढने का आग्रह किया। बढ़ते कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए प्रदेश नंबर 2 में सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा पोस्टों की तादाद दुगना से अधिक बढ़ाने की तैयारी में है। भारत से सटे सीमाई इलाकों में मौजूदा 50 बीओपी को बढ़ाकर 123 की तादाद में बीओपी खड़ा करने की तैयारी की गई है। ये जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश नंबर 2 कार्यालय बर्दीवास ने दी। बता दें कि सशस्त्र प्रहरी सीमा पोस्टों पर फिलहाल 3,500 पुलिसकर्मी परिचालित हैं। नेपाल प्रहरी के 2100 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। बीते जेठ के पहले हफ्ते में सिर्फ एक पुलिसकर्मी में संक्रमण पाया गया था, जबकि सावन महीने के बाद उनमें कोरोना संक्रमण की दर एकाएक बढ़ने लगी है। कुल 2,161 संक्रमित पुलिसकर्मियों में से 950 लोग संक्रमण मुक्त होकर अपने कामों पर लौट चुके हैं। ये बात प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कड़ायत ने दी। बता दें कि इनमें सबसे अधिक संक्रमित पुलिसकर्मी काठमांडू घाटी के हैं, जिनकी तादाद 624 है। इनमें से 558 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने सभी नागरिकों से आयुर्वेद योग और ध्यान जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को अपनाने की अपील की है। बर्दीवास वार्ड नंबर 3 स्थित अपने आवास पर प्रेस संगठन नेपाल के जिला प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान मंत्री पोखरेल ने बताया कि कोविड 19 के संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर प्राचीन इलाज की पद्धति पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्था में शिक्षा के क्षेत्र में वैकल्पिक शिक्षा अपनाने की ओर सरकार अग्रसर है। मध्य पूर्व के 4 देशों में लागू की जाने वाली आईएलओ परियोजना के लिए गैर आवासीय नेपाली संघ ने परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली से विचार विमर्श किया। मध्य पूर्व देशों में रह रहे नेपालियों की समस्या के बारे में केंद्रित रहकर की गई वर्चुअल मीटिंग में मंत्री गेवाली ने कोरोना की असहज परिस्थिति में गैर आवासीय नेपाली संघ द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर आवासीय नेपाली संघ और विदेश स्थित नेपाली दूतावास के बीच काफी अच्छे संबंध हैं और आगामी दिनों में सहकार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्षा और सहकाल के देवता रातो मच्छिंद्रनाथ के रथ को आज खींचा गया। हरेक साल मच्छिंद्रनाथ की रथ यात्रा को गाबहाल होते हुए मंगल बाजार, सुंदरा, लगन खेल और जावला खेल तक ले जाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के जोखिम के मद्देनजर रथ को आज ललितपुर महानगर पालिका के 16 खुटे तक खींचकर ले जाया गया। इस साल रथ को इन सभी जगहों पर न ले जा पाने की वजह से देश में किसी भी प्रकार का अनिष्ट न हो, इसलिए कल और परसों क्षमा पूजा की गई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। स्थानीय प्रशासन ने ललितपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती अपनाई है। रातों मच्छिंद्रनाथ की रथ को खींचने के क्रम में हो सकने वाली दुर्घटना के मद्देनजर भाद्र 26 तक के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कड़ाई की गई है, जिसके अंतर्गत एक जगह 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। ये जानकारी ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट ने दी। निर्धारित समय में रासायनिक मल आपूर्ति न करने के कारण कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड ने ठेकेदार कंपनियों के साथ हुए ठेके को रद्द कर दिया है। शारदा प्रसाद अधिकारी की शैलुंग इंटरप्राइजेज और होमनाथ कोयराला की हानोको मल्टीप्रपोज कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करने और कंपनी द्वारा डिपोजिट रकम को जब्त करने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल ने दी। उन्होंने बताया कि तत्काल के लिए समझौता रद्द किया गया है और जमानत रकम जब्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बता दें कि 50,000 मेट्रिक टन यूरिया मल लाने के लिए बीते पूस 28 और माघ 4 गते को किए गए टेंडर में इन दो कंपनियों को ठेका मिला था। समझौते के मुताबिक बीते सावन 10 तक पहला लॉट और भाद्र 20 तक में निर्धारित पूरा मल कंपनियों को उपलब्ध करवाना था। कंचनपुर की महाकाली नगरपालिका में आज फिर 4 लोगों में स्क्रब टाइफस के मरीज पाए गए। महाकाली नगरपालिका अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुधारा में उच्च ज्वर के मरीजों में की गई खून की जांच के बाद उनमें से 4 लोगों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। ये जानकारी वहां के डॉक्टर गगन चौधरी के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। इसी तरह टोटी जिले में बीते सावन से अब तक स्क्रब टाइफस के 30 मरीज पाए जा चुके हैं। स्क्रब टाइफस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इससे बचने के उपाय के बारे में जनचेतना फैलाने का काम हो रहा है। ये जानकारी स्वास्थ्य कार्यालय टोटी के प्रमुख रमेश मलासी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस दौरान 1,065 लोगों की मौत भी हुई और कुल मौतों का आंकड़ा 70,000 के पार हो गया। बता दें कि कोरोना से सबसे अधिक संक्रमित होने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 5 सितंबर को कोरोना वायरस से जूझ रहे 70,072 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। ये एक दिन में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह से भारत का रिकवरी रेट 77.23% हो गया है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,71,55,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,92,64,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 64,39,681 लोग कुल संक्रमित हैं। वहीं 1,92,950 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37,07,215 लोग ठीक हुए। वहीं भारत में अब तक 41,60,493 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 71,120 लोगों की मौतें हो चुकी है और 32,19,750 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील में कुल संक्रमित 41,23,000 हैं, जबकि 1,26,230 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 32,96,702 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी तरह रूस में कुल संक्रमित 10,25,505 हैं, जबकि 17,820 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 8,40,949 लोग संक्रमण मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। पिछले 24 घंटों में देशभर में 1814 लोग हुए कोरोना मुक्त। इसे मिलाकर कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की तादाद हुई 28,941। काठमांडू घाटी में 354 समेत देशभर में कोरोना के 980 नए मामले आए सामने। काठमांडू के वीर अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का सरकार ने किया निर्णय। और बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।